कुछ ऐसा ही बोलते हुए राजवीर ने सम्राट की ओर इशारा किया और फिर अरमान से कहा और उसे सीधे घसीटकर आस्था के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। जहां दूसरी ओर दीवार के पास सम्राट आस्था के साथ बदतमीजी कर रहा था, वहीं आहान गुस्से और हैरानी में बोला था, आखिरकार ये पागल इंसान करना क्या चाहता है और अरमान भाई को इस तरह सम्राट और आस्था का ये सब क्यों दिखा रहा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक झटका सा लगा और वो घबरा कर बोला, कहीं ये उसे भड़का तो नहीं रहा। दरवाज़ा खोलो, कोई तो दरवाज़ा खोलो। कहीं न कहीं अब आहान समझ चुका था कि राजवीर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो अरमान के दिमाग में जहर भर रहा था, उसे उकसा रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे सब लोग उसी जगह कैद होकर रह गए थे। सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। ना उनकी आवाज़ बाहर जा रही थी, ना ही वे खुद बाहर निकल पा रहे थे। फिलहाल ध्रुव जल्दी से बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम जल्दबाजी में यहाँ आ गए। इस तरह तो हम आस्था भाभी को बचा भी नहीं पाएंगे और उस सम्राट की हिम्मत कैसे हुई भाभी को छूने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहीं ना कहीं सबकी आंखों में सम्राट के लिए गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। स्पेशली वीर सिंह राठौर तो बेकाबू हो चुका था। वो लगातार कांच पर मुक्के बरसा रहा था, दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश कर चुका था, लेकिन दीवार तोड़ना तो दूर, उस पर हल्की सी खरूच तक नहीं आई थी। अब सबका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। उधर आस्था लगातार सम्राट से बचने की कोशिश कर रही थी, कभी उसके हाथ पकड़ रही थी, कभी उसे पीछे धकेल रही थी, कभी उसके वार से खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन सम्राट था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हर हाल में अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। तभी राजवीर ने मुस्कुराते हुए कांच में कैद सभी लोगों की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हें खुली चुनौती दे रहा हो, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। वहीं आहान ने अपना सिर पकड़ लिया और पछतावे में बोला, ये सब मेरे दिमाग में आ रहा था लेकिन मैंने सोचा ही नहीं, मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वहीं अविनाश और टाइगर दोनों की आंखों में खून उतर आया था। सभी लोग एक साथ कांच पर जोर जोर से मुक्के मार रहे थे। सभी ताकतवर थे, बॉडी बिल्डर थे, लेकिन राजवीर के बुने हुए इस चक्रव्यूह से निकल पाना इतना आसान नहीं था। उधर राजवीर अब धीरे धीरे अरमान के चारों तरफ चक्कर काटते हुए बोला, अरमान सिंघानिया, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ रहे हो, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तुम सबसे ताकतवर हो, लेकिन जानते हो, तुमने सिर्फ एक जगह गलती कर दी, तुमने अपनी पसंदीदा औरत को खुला छोड़ दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसके आसपास रहना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था कि वो औरत पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ तुम्हारी बन जाए। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? वहीं अरमान लाल आंखों से सिर्फ राजवीर को देखे जा रहा था। इधर अविनाश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ये राजवीर आखिर अरमान के साथ इतनी बकवास क्यों कर रहा है और अरमान इतनी आसानी से उसकी हर बात क्यों सुन रहा है? क्या चल रहा है ये सब? अब तक तो उसे राजवीर की गर्दन पकड़ लेनी चाहिए थी, लेकिन वो है कि बस सुनता जा रहा है। वहीं आकाश और सुमित पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। वे बोले, कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है, कहीं राजवीर ने अरमान को फिर से ट्रांस में तो नहीं डाल दिया, इसीलिए वो उसकी हर बात मान रहा है। तभी राजवीर अरमान को घसीटते हुए ठीक उस कांच के सामने ले आया जिसके दूसरी ओर आस्था और सम्राट थे। वहां सम्राट और आस्था के बीच जोरदार झड़प चल रही थी, लेकिन अब राजवीर के इशारे पर सम्राट ने आस्था को कमर से पकड़ लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। ये दृश्य अरमान के ठीक सामने था। तभी राजवीर ने अरमान की ओर देखकर कहा, वो देखो सामने तुम्हारी बीवी किस तरह किसी और के साथ झगड़ रही है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। देखा तुमने बीवी को खुला छोड़ने का नतीजा? इसीलिए तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर जिंदगी में कोई औरत लाओ तो उसे पूरी तरह अपने काबू में रखो, उसे कभी खुला मत छोड़ो। ये कहते हुए राजवीर धीरे धीरे अरमान के दिल और दिमाग में जहर खोल रहा था। वहीं आहान और ध्रुव के जैसे ही राजवीर की ये बातें सुनी, सबने अपना सर पकड़ लिया था और सबको समझ देर नहीं लगी कि जरूर अरमान एक बार फिर से इसमें फंस गया है और राजवीर ने उसके साथ इस तरीके की घटिया हरकत कर दी है। सभी गुस्से से तिलमिला रहे थे, अलग अलग तरीकों से उस कांच वाले रूम से निकलने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ 5 किलोमीटर मोटी दीवारें थीं जिन्हें तोड़ पाना किसी भी लिहाज से नामुमकिन था, क्योंकि उन्हें खोलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही था, अंदर से वो किसी भी कीमत पर नहीं टूट सकते थे। वहीं अचानक तभी आहान की नजरें एक दीवार के उस पार हल्की सी एक झलक पर पड़ी और अब जैसे ही उसे उस बात का अंदाजा हुआ कि उधर क्या है, वो ध्रुव के ऊपर चढ़ गया। ध्रुव हैरानी से बोला, क्या कर रहा है तू, इस तरह से ऊपर कैसे चढ़ सकता है? तब आहान ने जल्दी से हकलाते हुए कहा, अरे उधर देखो, इसका मतलब साफ है कि जानबूझकर राजवीर ने हमें ट्रैप किया है। वहां पर कुछ और नहीं बल्कि थोड़ी ही दूरी पर दूसरे कांच के सेक्शन में काफी सारे जंगली जानवर मौजूद थे जिन्हें सिर्फ एक दीवार हटाकर उनके पिंजरे से छोड़ा जा सकता था। बाघ, भेड़िए, टाइगर, हर तरह के खूंखार जानवर वहां मौजूद थे और वो सभी किसी को भी बेरहमी से नोच नोच कर मार सकते थे। ये देखकर सबके माथे पर पसीना आ गया था। सबको साफ समझ आ गया कि वो लोग राजवीर को ढूंढते हुए यहाँ नहीं आए थे बल्कि राजवीर ने उन्हें यहाँ बुलाकर जाल में फंसाया है। अब तो सबकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी आहान जल्दी से बोला, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, इस तरह से देर नहीं कर सकते, फटाफट हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये सब राजवीर का षड्यंत्र है जिसमें हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं सब लोग पूरी तरह से डर चुके थे।
नेटवर्क ना होने की वजह से किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। सारे सिस्टम पूरी तरह से बंद थे। सब घबराकर दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वहीं टाइगर लाल आंखों से राजवीर को घूर रहा था, जिसने उसके किंग को इतनी तकलीफ देने की कोशिश की थी। उसका बस चलता तो वो अभी जाकर राजवीर को जिंदा ही चीर देता, लेकिन राजवीर बड़े ही शांत चेहरे के साथ सबको घूर रहा था। अचानक राजवीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उन लोगों की तरफ बाई दिशा में हिलाता है। राजवीर के इस इशारे को देखकर आहान घबराते हुए बोला, इसने अभी हमें फाइनल गुड बाय कहा है। इसका मतलब साफ है कि ये अभी जंगली जानवरों को हम पर छोड़ने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों का क्या होगा? ये कहते हुए आहान के दांत आपस में किटकिटाने लगे थे, लेकिन अब चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सबके चेहरे ये साफ बता रहे थे कि अब यहाँ से जिंदा निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है। तभी देर ना करते हुए अचानक अरमान ने गहरी नजर उठाई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो सम्राट और आस्था को घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे खून उतर आया हो, मानो अभी और इसी वक्त वो आस्था की जान ले लेगा। अरमान के चेहरे के हावभाव देखकर कहीं ना कहीं राजवीर को बहुत मजा आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब एक काम करो अरमान, ये लो कांच वाले रूम की चाबी, जाओ और अपनी बीवी की अपने ही हाथों से हत्या कर दो। जिस बीवी ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया है, जिसने तुम्हें शर्मिंदा किया है, वो तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं है। धोखेबाज औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ मौत है। याद है ना वो धोखा जो तेरी माँ ने तेरे पिताजी को दिया था? वही धोखा अब तेरी बीवी तुझे दे रही है।
जैसे ही राजवीर ने ये बातें कहना शुरू की, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। सबका चेहरा सफेद पड़ चुका था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजवीर का असली मास्टरमाइंड प्लान ये होगा। अब सबको साफ समझ आ गया था, जिस तरीके से उन्होंने पहले राजवीर की बीवी को उससे अलग किया था, उसका अंतिम संस्कार करके उसे हमेशा के लिए उससे जुदा कर दिया था, शायद उसी का बदला लेने के लिए राजवीर ने ये पूरा खेल रचा है। वो शुरू से ही अपनी चाल चल रहा था। वो चाहता था कि अरमान खुद अपने हाथों से अपनी बीवी की जान ले, और इसके लिए उसने ऐसा माहौल बना दिया सम्राट और आस्था को गलत तरीके से पेश करके कि अरमान उनके खून का प्यासा बन जाए। कहीं ना कहीं राजवीर को सम्राट या आस्था की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं थी, उसे सिर्फ अपने बदले से मतलब था।